Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
Jai Gaur Premanande. आप लोगों को बिंदी है कि आप लोग ना चेयर लेके ऐसे आ जाओ इस तरफ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय. देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः.
हरे कृष्णा. सब लोगों का बहुत धन्यवाद है. आज आप 23 जुलाई के मंगलवार के दिन इस संध्या जागृति कार्यक्रम में उपस्थित रहे. आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि और भी बहुत लोग आ सकते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, और आप लोग आ सकते थे और आप आ गए, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद है. शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य जन्म में भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होना ये बहुत ही भाग्य की बात है. इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसको कथा को, लेकिन भगवान की कथा अपने आप में ही इतनी अद्भुत है कि उसका लाभ मिलना ये मनुष्य जीवन में बहुत भाग्य की बात है। और साथ साथ मुझे भी जब कहने का अवसर मिलता है तो मेरे लिए भी बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि अगर हम लोग अगर भक्त बने हैं, समझो दीक्षा ली है, बहुत सारी चीज़ें की है, फिर भी हर क्षण सत्संग प्राप्त नहीं होता है। हफ्ते में एक बार, दो बार, कभी मंदिर में जो रहते हैं ब्रह्मचारी बनकर उनको रोज, लेकिन हम जैसे गृहस्थ लोगों को रोज के तौर पर सत्संग प्राप्त होता है क्या? तो जब भी मिलता है तो बड़े भाग्य का समय होता है। अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में हमें सत्संग प्राप्त होता है, और वो सत्संग प्राप्त होने के बाद में उसको गंभीरता से लेना चाहिए, सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मूल्यवान वस्तु हम लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं और सहजता से लेते हैं, वो कुछ समय बाद वापस ली जाती है। समझो आपको अपनी मम्मी ने बहुत महंगा सोने का गहना दिया और आपने उसको वॉश मशीन पे छोड़ के चले गए, आप हाथ धोने को निकाला वो छोड़ के चले गए, तो मम्मी क्या बोलेगी? ये लड़की जिम्मेदार नहीं है, वो महंगा कीमतीवान जो सोने का गहना है वो ले लेगी वापस हाथ से, और बोलेगी जब कभी त्यौहार होगा ना तब दूंगी आपको, ऐसे नहीं दूंगी। ऐसे सही है ना करना कि गलत है बताइए? कोई कीमती घड़ी आपको भेंट दिया और आप वो वॉश मशीन पे छोड़ के आए, ऐसे बाथरूम में ही छोड़ के आए, कहीं पब्लिक जगह शादी में, मेरा एक बचपन में एक बार गलती किया था, मुझे शादी में गंगूठी पहनने को दी थी तो मुझे वो मुंह धोते समय चुभ रही थी, तो मैंने उसको उतारा बेसिन पे रखा, साबुन से मुंह धोया और चला गया मैं वहां से, तो बहुत डांट पड़ी थी मुझे। अगर कोई कॉपर की अगर अंगूठी होती तो कोई डांटता मुझे? उसको नहीं डांटता, क्योंकि सोने की अंगूठी थी इसलिए डांट पड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यवान वस्तु अगर हमें पता नहीं है वो मूल्यवान है और हम उसको ऐसे ही उसको रखते हैं, किधर व्यवहार करते हैं, तो फिर वो हमसे वापस ली जाएगी, क्योंकि जब तक उस चीज़ की मूल्य जो उस चीज़ का है वो हमको नहीं पता चलता है तब तक वो हमको नहीं देते हैं, और गलती से दी गई तो वापस ली जाती है। तो भक्ति विधान में आप सब लोगों को सत्संग की प्राप्ति हुई है। कोई भी व्यक्ति आप में से यहाँ पर सत्संग के लिए जॉब लेने आया था क्या? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कि भाई गुरुजी का अस्पताल है इसलिए वो आए हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं, और जॉब में आपने कभी सोचा नहीं था कि सत्संग होगा, भगवान के विषय में चर्चा होगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन अपने आप हो रहा है वो। लेकिन वो अपने आप नहीं हो रहा है, दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं उसमें से कुछ 1,000 लोग यहाँ काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिनके पुण्य फलित हो गए हैं उनको ही सत्संग प्राप्त होता है, और फिर जॉब का बहाना है कि भक्ति विधान में जॉब मिल गया, लेकिन वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फलित है जिसके वजह से आप यहाँ बैठे हो। आपको शायद मेरा बात अच्छी लगती हो नहीं वो पता नहीं है मुझे, लेकिन ये सच बात है, मेरे लिए भी सच है, क्योंकि मुझ जैसे बहुत डॉक्टर लोग हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में है, लेकिन सब डॉक्टर लोग हरे कृष्ण में जितने हैं वो भक्ति विधान में काम नहीं करते, अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रयास करने पर भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाते, इतने फंसे हुए हैं दिल्ली में और कई जगह पर, और हम लोग वो भाग्यवान लोग हैं, हम पहले से इसी में हैं, इतने कि शुरू से लेकर अभी रिटायरमेंट तक इधर ही रहेंगे, ये बड़े ही भाग्य की बात है। तो इसलिए सत्संग ये विषय जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मनुष्य जन्म में जो जन्म लिया है स्त्री हो या पुरुष हो, सत्संग के बिना रहना यानी एक इंसान भी होकर जानवर की तरह रहना, क्योंकि जानवर के जीवन में सत्संग नहीं होता है कितना भी कोशिश करेगा। तो अगर कोई भक्त का जानवर है, कोई भक्त का पालतू कुत्ता है वगैरह, तो फिर वो घर में चली रहा है कीर्तन तो वो उसमें सुनता है, कान में पड़ता है उसके, जो भी खाता है प्रसाद खाता है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर जो मनुष्य नहीं है, ऐसे जितनी योनियां हैं उस सत्संग की व्यवस्था होती है क्या? नहीं होती है। सत्संग की व्यवस्था केवल मनुष्यों के लिए की गई है, ये बात सच है। इस सभा में कोई कुत्ता बिल्ली आके बैठ सकता है क्या? बैठने में दिक्कत नहीं, समझेगा क्या उसको? कुछ नहीं समझेगा। लेकिन मनुष्य कितना भी बुद्धू होगा, एकदम ठो बुद्धू है वो, लेकिन फिर भी उसको समझ में आएगा जो बताया जा रहा है, क्योंकि वो मनुष्य है,
उसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी इंतजाम है उसके अंदर, है ना। कितना भी गरीब फटीचर आदमी आएगा तो उसको ये बातें समझ में आएगी उसकी भाषा में जो बताई जा रही है। तो मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और बिना सत्संग के मनुष्य का जीवन कभी भी बिताना नहीं चाहिए। वो एक दुर्भाग्य की बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब ये मत समझना कि अरे क्या प्रभु जी समय किधर है, इतना दगदग है, इतना काम है, इतना परिवार की जिम्मेदारी है, इतना परेशानियां है, कहाँ पर सत्संग है कर सकते हैं हम लोग। पहले समस्या को सुलझाएं कि समझ सत्संग करें पहले। आप बोल रहे गीता पढ़ो, गीता पढ़े कि कर कर्जा चुकाने के लिए काम करें पहले, है ना। तो उसका उत्तर यह है कि सबके जीवन में कष्ट होते ही रहता है। कोई व्यक्ति यहां पर छाती पर हाथ रख बोल सकता है क्या मुझे कष्ट नहीं है, मैं एकदम कष्ट फ्री हूं, कोई कह सकता है यहां पर? किसी की ऐसी स्थिति है तो बता दो। प्रधानमंत्री को मिलो और पूछो आपको समस्या है, बोला बहुत समस्या है मेरे पीछे। प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, समस्या किसका पीछा नहीं छोड़ती है, देवताओं का पीछा भी नहीं छोड़ती है वो। जो जो जीवन जी रहे हैं वो सबके लोगों के पीछे समस्या है। और समस्या होते हुए भी हम अगर जीवन का उद्देश्य सत्संग को पूर्ण करते हैं तो हम भाग्यवान हैं। सत्संग और समस्याओं का बहाना लेकर सत्संग दूर रहते हैं तो दुर्भाग्य है वो। तो आज हम ने सोचा कि व्यवहार के विषय में शास्त्र में थोड़ी बहुत कहानी मुझे याद आई भोजन करते करते, तो सोचा मैं बताऊँ उसको कि व्यवहार श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। देखो मैं पंढरपुर में गया था और पंढरपुर में ना दर्शन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो हम लोग क्या करते हैं, सब सेवा में हो गए हमारी तो लास्ट में मुख दर्शन को जाते हैं। वो अलग लाइन होती है, एक होती है चरण दर्शन की लाइन, एक होती है मुख दर्शन की लाइन। वो थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी हो जाती है और चरण के लिए कम से कम 8-9-12 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो उतना हमारे पास समय भी नहीं, हमारा सेवा बहुत होती है तो समय कहाँ है। तो जाने के पहले एक आध घंटा में लाइन लगा देते हैं, वो भी एकादशी को नहीं द्वादशी को, भीड़ कम होने के बाद। तो मैं जब लाइन में था तब मुझे एक वारकरी मिला मेरे साहित्य में, बहुत अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति था और वो अपने आप बात करने लगा और उसने एक बहुत ही सुंदर बात मुझे बताई, हाँ एकदम सहजता से। उन्होंने कहा कि विट्ठल के सामने, भगवान विट्ठल के सामने अगर कोई पहुंचता है समझो किसी भी बहाने, तो वो एकदम आदर्श व्यवहार करेगा भगवान के सामने, है ना। उसकी भक्ति जो है ना वो परम सीमा पर रहेगी उस समय, जितनी भी भक्ति है वो सब सामने रहेगी प्रकट रूप में। तो उन्होंने कहा कि भगवान के सामने विट्ठल के सामने जब जाएंगे तो आपका जो व्यवहार है वो बेस्ट ही रहेगा, लेकिन भगवान विट्ठल को आप जब उनके सामने हो तो कैसा व्यवहार कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब उनके सामने आप नहीं हो तब आपका कैसा व्यवहार है इसमें विट्ठल को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो हमारा रियल चैलेंज है। काय बोलले मला ते कि विठ्ठलासमोर सगळेच मग्न असतात भक्तीमध्ये पण विठ्ठलाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही। जेव्हा मी समोर तुमच्या नाही तेव्हा तुम्ही कसे वागता त्याच्यात विठ्ठलाला जास्त इंटरेस्ट आहे। त्यामुळे आपके सामने नाही हूँ तब आपका व्यवहार कैसे रहता है, आप कैसे व्यवहार करते हो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस पर ही आपके भक्ति का नाप होता है। आपके भक्ति का नाप मेरे सामने आप कैसे रहते हो उस पर नहीं रहता है। जैसे अगर डायरेक्टर हॉस्पिटल के आपके सामने हैं तो आपका जो व्यवहार है वो आपका रियल व्यवहार नहीं है। वो जो आपके सामने नहीं है तो आप कैसे व्यवहार करते हो, कैसे काम करते हो, वो आपका सही परीक्षा है। और बेस्ट एम्प्लॉय कौन है, वो डायरेक्टर हो सामने या नहीं हो अपना काम बेस्ट करूँगा मैं, वो बेस्ट एम्प्लॉय है। बाकी एम्प्लॉय कैसे हैं, साहब आएंगे तो एकदम बेस्ट वर्किंग, सब लोग एकदम मग्न दिखाई पड़ते हैं, साहब चले गए तो स्वच्छंद विहार करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही 2 मिनट के बाद बहुत दिल को छुई मेरे, बहुत मैंने उसको विचार किया कि कितनी महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम भी अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं तो कितनी बड़ी बात है ये कि अरे लाइन लगे हैं विट्ठल का नाम हरी हरी पांडुरंग हरी हरी पांडुरंग बोल रहे हैं, लेकिन दर्शन होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या करते हैं हम, मन में क्या विचार है हमारे, सब सेल्फी लिया, फोटो लिया, मंदिर का कलश का फोटो लिया, भक्तों का लिया, उसके बाद में जब जा रहे हैं तभी क्या होगा, ट्रेन में बैठ रहे थे भी क्या होगा, है ना। तो ये हमें विचार करना चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ भक्तों की कहानी बताऊंगा आपको कि भक्त जो है वो कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है।
एक कहानी मुझे याद आ रही है कि द्रौपदी की। हाँ, अभी द्रौपदी कितनी महान व्यक्ति थी पता है आपको? द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, किसी माता पिता के कोख से नहीं हुआ था। यज्ञ जिसने किया था वो माता पिता बाद में बन गए, क्योंकि क्या है वो लॉ है उसका कि मैंने यज्ञ किया था, मेरे यज्ञ से आई तो मेरी पत्नी बेटी हो गई। लेकिन जैसा हमारा आपका जन्म होता है वैसे उसका जन्म नहीं हुआ था। दूसरी बात ये थी द्रौपदी की कि वो ऐसे छोटी बालिका, फिर रेंगती हुई, फिर चलती हुई, ऐसे नहीं, वो एकदम युवा अवस्था में ही उसका अलंकार के साथ ही उसका मतलब लंबे केस, कमल नैनी आँखें और साड़ी पहने हुई, अलंकार पहने हुआ, उसका पूरा फुल ग्रोन जन्म हुआ था उसका। जैसे कृष्ण भगवान का अवतार कैसे हुआ था, जब कृष्ण भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए तो कैसे चार भुजा वाले पूरा पीताम्बर धारण किए हुए, मकर कुंडल, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, सब वैदुर्य मणि का मुकुट सब पहनकर आए थे। ऐसा किसी का जन्म नहीं होता है, हमारा जन्म रोते रोते होता जन्म होता है, बिना वस्त्र का होता है। ऐसी द्रौपदी थी महान, उसका नाम है याज्ञ सेनी, यानी कि वो यज्ञ से ही उसका प्रकट हुआ था। और उसके लिए उसका यज्ञ नहीं किया गया था, किसी और कारण से किया गया था, लेकिन किसी पुण्य कारण, पुण्य की वजह से उसका वो जन्म हुआ था उसके भाई के साथ। उसके भाई को प्रकट करने के लिए वो यज्ञ किया गया था। द्रोणाचार्य को मारने वाला कोई वीर योद्धा चाहिए मुझे, उसके लिए यज्ञ किया था। तो उसका उत्तर में धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, लेकिन साथ में द्रौपदी का भी जन्म हो गया। और द्रौपदी के जीवन में कितना ऐसे प्रसंग आए जो द्रौपदी की परीक्षा करने वाले थे। इतनी महान सुगंधित थे उसका शरीर, एक एक कोष तक उसके शरीर की सुगंध जाती थी, ऐसी महान देवी थी वो। कई कठिनाइयां उसके सपनों में आई, जैसे वो स्वयंवर उसका हो रहा था। भाई स्वयंवर मतलब क्या, कौन आके जीतेगा वो तुम्हारे पहचान का नहीं हो सकता है ना, वो पता नहीं है कि पहचान का ही होगा कि बिना पहचान का होगा। ये तो पूरे ब्राह्मण वेश में थे, वनवासी वेश में थे, लेकिन कितनी वो सुशील थी कि पिताजी ने जो वर स्वयंवर रचा था उसमें क्या जो भी जीतेगा वो मुझे पत्नी बना के ले जाएगा। अभी जब वो ब्राह्मण ने उसको जीता तो प्रश्न करने का भी, क्वेश्चन करने का भी समय नहीं है कि पापा ये कौन है, इसका पूछो भाई आगे पीछे, मम्मी पापा घर किधर है, क्या नौकरी करता है, जरा इंक्वायरी करो इसकी। नहीं, इतनी सुशील थी वो कि सीधे उनके पीछे चली गई। उसके बाद में घर गई तो सोच रहे कहाँ ले जा रहे मुझे, जंगल में राजकन्या राजपुत्री, हाँ, जिसका कभी चरण कमल भी जमीन पर नहीं पड़ा, हमेशा मखमल पे चलती थी वो, इतने चरण उसके कोमल थे, कभी भी जमीन पर पैर रखा नहीं। ऐसे कन्या को वो नंगे पैर जंगल में चल के लेके जा रहे हैं पैदल, ऐसे नहीं कि भाई इम्बाला गाड़ी आ गई है, वो बारात जा रही है उनकी, हाँ, या तो रथ जा रहा है उनका लेके, बहुत सजा झजा कर बारात जा रही है दुल्हन की, दुल्हा के घर पे। ऐसे पांच भाई लोग ले जा रहे हैं उसको वनवासी भेष में, और एक झोपड़ी में गए और मम्मी एक बैठी हुई है उधर अंदर, और तो भैया लोगों ने सोचा थोड़ा मजाक कर लेते हैं, कहते माँ हमने भिक्षा लाई है आज, बहुत अद्भुत भिक्षा लाई है। तो वो ऐसी उल्टी थी, मतलब पीछे थे बच्चे दरवाजे पे, तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, जैसे रोज बांटते हो वैसे बांट लो। कितना शौक है ये बात, पांच भाइयों में जैसे रोज बांटते हो वैसे रोज वो भिक्षा बांट लो, तो शॉकिंग है एकदम, ये बहुत शौक लगा बड़ा। फिर कृष्ण आए, फिर उन्होंने उसका पूर्व जन्म का इतिहास बताया, वो सब अलग बातें, लेकिन आप द्रौपदी का विचार कीजिए। द्रौपदी को एक व्यक्ति ने स्वयंवर जीता है और एक व्यक्ति उसका पति बनने योग्य है, क्योंकि उसने स्वयंवर जीता हुआ है, तो वो उसी को पति मानकर चल रही है, और अभी पता चल रहा है कि पांचों को पति मानना पड़ेगा। कितना बड़ा शॉकिंग है। थिंक आपने सुना है क्या उस समय कि द्रौपदी ने बहुत झगड़ा किया, बहुत बवाल खड़ा कर दिया उधर, बहुत पिताजी को जाके कंप्लेंट किया कि ये क्या हो रहा है, सब सैन्य आए, पिताजी का झगड़े हो गए सबके बीच में, ऐसा कैसा आप बात कर सकते हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, जैसे भगवान की इच्छा है वो शांति से विचार करती रही, डिस्टर्ब हो गई वो, लेकिन उसने बवाल नहीं मचाया। ये उसके श्रेष्ठ होने का लक्षण है, जब भगवान आके सब समझा रहे हैं तो भी शांति से वो सुन रही है कि तुमने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे वर मांगे थे, तो शंकर भगवान ने आपको कहा था कि एक ही व्यक्ति में ऐसे पांच गुण नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका विवाह पांच लोगों के साथ में होगा, जो आपने पति के गुण मांगे थे ना कि ऐसा गुण वाला पति चाहिए, सुंदर चाहिए, धर्मशील चाहिए, और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर होना चाहिए, और सुंदर भी होना चाहिए, नीतिमान भी होना चाहिए, तो ये पांचों गुण कलयुग में, द्वापर युग में किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, इसलिए आपको पांच लोगों का साथ व्यवहार करना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप आपको ये हो रहा है। अभी आपको कोई बताएगा कि आपने ना पिछले जन्म में ये पाप किए थे इसलिए आप गरीब हो, कितना गुस्सा आएगा आपको? सत्य होने पर भी गुस्सा आएगा कि नहीं? अगर आप बोलेंगे इस आपके इतने पुण्य कर्म थे कि आप राजा बनो, देखो इसकी वजह से आप राजा बने हो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। जो आज अच्छा है तो उसका वर्णन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आज अगर बुरा चीज़ हो रही है, अगर कनेक्शन कुछ दिखाया पास्ट लाइफ में, तो बहुत खराब लगेगा आपको। अरे पास्ट लाइफ का किसने देखा है, कौन देखा है, हिसाब सच्चा है कि गलत है, या ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा बोलेंगे आप। और अच्छा हो गया तो ऐसा नहीं आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन द्रौपदी बहुत सुशील थी, अपने श्रेष्ठ पिता की वो श्रेष्ठ कन्या थी, इसलिए अपने पिताजी का आदर रखते हुए उसने वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे किसी को आपत्ति हो। यही सिखाए पिताजी ने उनको, ऐसे व्यवहार, ये द्रुपद राजा की लड़की ऐसी है, इसमें यही संस्कार दिए उनको, ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया उसने। आगे जाकर भी उसके जीवन में बहुत विकट प्रसंग आए, लेकिन मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगा जिसमें उसके वैष्णवता का श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। महाभारत का युद्ध जब हुआ ना, तो कौरवों का तो ऐसी वाताहत हो गई कि सब लोग मर गए कौरवों के, यहाँ तक कि दुर्योधन भी गिर गया, भीष्म देव गिर गए, उसके बाद में द्रोणाचार्य गिर गए, उसके बाद में क्या कहते हैं उसको, कर्ण का वध हुआ, उसके बाद में शकुनी, उसके बाद में शल्य, मध्यराज शल्य, इसका वध हो गया, एक एक करके सेनापति सब लोग धराशायी हो गए, और लास्ट जो थे सब सेना समाप्त हो गई और अकेला दुर्योधन बचा, और कौरव पक्ष में दो व्यक्ति बचे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, लेकिन सैन्य सब खत्म। अभी वो दुर्योधन जो है ना, अपने योग बल से जाके जल के नीचे बैठ गया जाके, वो किधर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब ढूंढ रहे क्रोध है, जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक युद्ध जीता ऐसे बोल नहीं सकते हैं, वो कौरव का सेनापति है, वो जिंदा है कहीं छुपा हुआ, फिर भी जब तक उसका वध नहीं तब तक युद्ध जीत गया ऐसे बोल नहीं सकते हैं, तो सब जगह सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वो चिल्लाते हैं, दुर्योधन जहां पर भी हो युद्ध के लिए सामने आ जाओ, तो वो वीर था, वो तो सुना उसने, तो फिर आ गया वो जल के बाहर, और फिर कहा कि लड़ो, तो भीमसेन से उसका युद्ध तय हुआ। फिर बहुत दिन युद्ध हुआ, फिर भीमसेन ने उसका भी वध कर दिया, मतलब वध नहीं हुआ, छिन्न विच्छिन्न कर दिया और वो गिर गया। तो अश्वत्थामा जब उसको मिलने आया ना, तो अश्वत्थामा को दुर्योधन का ये अवस्था देखा नहीं गया, ऐसा पूरा मतलब ना, यहाँ पर ठप ओके है, यहाँ पर भी सब ओके है, बीच का भाग है ना पूरा लगदा हो गया था कंप्लीट, कोई मांस रक्त हड्डी कुछ ऐसा पूरा चटनी हो गया था पूरा कंप्लीटली, और इतनी भयंकर वेदना में था वो, लेकिन वीर था वो, उसके अंदर बहुत सहन शक्ति थी, इसलिए फिर भी वो जिंदा था। तो अश्वत्थामा को देखा नहीं गया, उसको मित्र था ना वो। तो अश्वत्थामा ने ना दुर्योधन का आदेश विदेश कुछ लिया नहीं, उसको लेना चाहिए था, लेकिन वो बोला मेरे मित्र का इतनी भयंकर अवस्था मुझे सहन नहीं होती है, मैं इसका बदला लूंगा। तो उसने क्या किया, रात के समय पे, ऐसा वीर पुरुष नहीं करते कभी, वो तो दिन में ललकारते हैं, युद्ध करते हैं, उसमें जो भी होता है, रात के समय पे दुर्योधन का परास्त पराजय भी हो गया, अभी जीत हो गई, सब लोग आराम से तंबू में सो गए थे, तो जिस तंबू में पांडव लोग सो रहे थे उस तंबू को अश्वत्थामा ने आग लगा दिया, और आग जब लग गई तो अंधेरा था सब जगह पे, उसने क्या किया, एक जगह से आग लगाई और अगले रास्ते पर खड़ा हो गया दरवाजे पर, और जो आग के भाई सब लोग भाग रहे हैं वो वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो सबको सफा सब काट रहे हैं वो। अभी दिन में आपको पता चलता नहीं क्या हो रहा है, अंधेरा, आग, उसमें भगदड़ मच रही है, शोर मच रहा है, एकदम केओस है ना पूरा, अभी अंधेरा धुआं और इतनी लोग चिल्ला रहे हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है, और वो एक ही गेट खुला था, सब एक गेट से भाग रहे थे, उसके दरवाजे पे खड़ा था, सबके सर काट दिए उसने। फिर वो उस तंबू में गया जहां पर पांडव लोग सो रहे थे, और उसने पांच बाण से वो पांच बाण मार दिए, लेकिन बाद में दिन में पता चला कि वो पांडव नहीं थे, पांडव के पुत्र थे वो, और पांडव किसी जगह पर और जगह पर सो रहे थे। अब अंधेरे में उसको भी समझ में नहीं आया, पांच वीरों को मारा उसने अलग जाके, लेकिन उसको पता नहीं चला कि ये पांडव नहीं थे, लेकिन पांडवों के पुत्र निकले वो। तो नेक्स्ट अभी दिन हो गया तो पता चला कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, तो पांच शव रखे हैं और द्रौपदी वहां पर रो रही है। आप सोच सकते हो, अभी कल आपकी विजय हो गई है, इतनी खुशी की बात है, और आज सुबह पता चलता है कि आपके पांचों पुत्रों का वध हो गया है, वो भी ऐसे युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, वही कितनी गर्व की बात है, अभिमन्यु का वध युद्ध में हुआ था, तो चलो मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन ये कैसे सोते हुए किसी योद्धा को कायरता के रूप से मारा गया, तो कितनी दुख की बात है। युद्ध में मरते तो भी वो गौरव करती कि भाई चलो मैं क्षत्राणी हूँ, मेरे पुत्र भी क्षत्रिय थे, मुझे अभिमान है मेरे पुत्र पर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो विलाप कर रही थी, पांच शिशु, मतलब शिशु नहीं थे वो, ऐसे युवा अवस्था में थे, 16-20 के उम्र में थे, तो रो रही है वो। और तब सब वो करते इन्वेस्टिगेशन करते हैं कौन क्या हुआ, तो पता चलता है कि अश्वत्थामा ने किया ये। तो फिर कृष्ण आदेश बोलते चलो अर्जुन चलो हम चलते हैं, भीम बोले हम भी जाते हैं। तो भीम अर्जुन और कृष्ण एक रथ पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। वो देखा अरे मेरे पीछे भीम और अर्जुन और कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो भी रथ पर बैठकर भागने लगा। वो भी क्या चांस है उसका बचने का, तीन तीन वीर वहाँ पर स्वयं कृष्ण भी आ रहे हैं, तो वो भागने लगा। तो वो उसका जो घोड़े थे ना वो उनके मुँह से झाग आ गया, इतना दौड़ाया उसने, लेकिन वो आगे जा नहीं सके, तो वो जंप मारा उसने रथ से और पैदल भागने लगा वो। तो उसकी बराबरी के लिए भगवान और सब लोग तीनों लोग भी पैदल उतर गए, इक्वल होना चाहिए ना ऐसे, तो वो पैदल जाके उन्होंने उनको पकड़ा। और ये आप सोच सकते ना भाई, आप समझो आप पिताजी होते, आप अगर होते भीम की जगह पर, तो क्या अवस्था होती मन की आपकी। हाँ सोचिए आप, कितने घृणास्पद तरीके से आपके पुत्र का वध किया गया है, तो वहीं कभी मार देते उसको। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं नहीं उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं, और द्रौपदी का सबसे बड़ा गुनहगार है, हमारा नहीं है, द्रौपदी के पांच पुत्रों का उसने वध किया है, मतलब हमारे किया, लेकिन द्रौपदी सबसे अधिक दुखी है उससे, तो द्रौपदी को पूछते हैं क्या किया जाए उसका। तो उसको ना पकड़ के वो लेके आए द्रौपदी के पास, उन पांच शवों के पास लेकर आए, जहां पर पांच शव पड़े हुए हैं और द्रौपदी विलाप कर रही है, वहां पर उसको लेके आते हैं और कहते हैं द्रौपदी देखो तुम्हारे गुनहगार को पकड़ के लेके आए, बताओ क्या करे उसका, क्या दंड दे उसको। तो आप मुझे बताइए द्रौपदी को क्या कहना चाहिए उस समय, बताओ आपके हिसाब से द्रौपदी को क्या कहना चाहिए, जब उसको ये पूछा जा रहा है और उसके गुनहगार को सामने खड़ा कर दिया है, क्या बताना चाहिए उसको? अगर आप द्रौपदी होती तो क्या बोलती? हाँ मार दो उसको, उसने ऐसे कायरता से हमारे वीर पुरुषों का वीर बालकों का वध किया है। लेकिन द्रौपदी ने पता है क्या बताया? वो उसके महानता का प्रूफ है। द्रौपदी ने बोला कि ये जो अश्वत्थामा है ये हमारे गुरु का पुत्र है, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। हाँ उसकी जो माता है वो कृपी है, कृपी यानी कृपाचार्य की बहन थी वो, कृपाचार्य की बहन का विवाह द्रोणाचार्य के साथ किया गया, उन दोनों को अश्वत्थामा नाम का पुत्र हो गया। तो वो गुरु द्रोण की जो पत्नी है, गुरु द्रोण तो मर गए, लेकिन गुरु द्रोण की जो पत्नी है वो गुरु माता है, वो हमारी माता की समान है। और मुझे आज ये अनुभूति हो रही है कि जब पुत्र की मृत्यु होती है, वो भी इस प्रकार से होती है, तो कितना दुख होता है। तो मुझे ये दुख का जो अनुभव आज हो रहा है, तो मेरी ऐसी ये धारणा है कि ऐसा दुख जो है गुरु माता को नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे आदेश होने की वजह से जो मुझे आज दुख हो रहा है, वही मेरे आदेश के बाद में इसका वध होगा, तो उसी शव पर हमारी गुरु माता विलाप करेगी, इसलिए उसको आप छोड़ दो। विमल जी नहीं नहीं उसको मार देना चाहिए, लेकिन द्रौपदी फाइनल अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा नहीं उसको छोड़ दो आप। भगवान को भी रहा नहीं गया, भगवान की भी इच्छा थी इसको मारना चाहिए, लेकिन भगवान भी देख रहे हैं अपने भक्त कितने गौरवशाली हैं, कितने सर्वगुण संपन्न और श्रेष्ठ हैं वो, तो फिर भी भगवान को ना रहा नहीं गया। तो आज तक के विश्व में जितना भी समय हमने पढ़ा है सुना है, जितना भी समय बीत गया है, उसके पहले कितने युग बीत गए होंगे, कितने कल्प बीत गए होंगे, कितने दिव्य युग बीत गए होंगे, उस तब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से उस समय तक भगवान ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा शाप नहीं दिया है जो उन्होंने अश्वत्थामा को दिया, क्योंकि भगवान को उसने माफ करने के बाद भी खुद को रहाने गया उनको कि इसने इतना बड़ा अपराध किया है, तो भगवान ने उसका ना जाके उसका मणि छीन लिया, मतलब जो मणि था यहाँ पर उसके गौरव का चिन्ह था, उसके बल का ऐश्वर्य का चिन्ह था, वो छीन लिया। उसके बाद में बोला इसको निकालने के बाद जो जख्म हो गई ना, वो शाप दिया कि ये जख्म कभी भरेगी नहीं।
और जख्म नहीं भरेगी एक बात है, खून बहता रहेगा उससे, और इतना दर्द होगा उसको, इतना दर्द होगा कि तुम सोचोगे कि मर जाऊं तो अच्छा है, ये दर्द में सहन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगने पर भी तुम मरोगे नहीं, ये भी शाप दिया उसको है ना। अभी बहुत दर्द हो गया, मरीज क्या बोलता है कि साहब भाई जिंदा नहीं, ये कैंसर का दर्द बहुत है मुझे, अभी आज के आज मरना तो अच्छा रहेगा, लेकिन मर नहीं पा रहा है वो, तो कितना तकलीफ होती है, जिंदा रहकर भी इतना कष्ट हो रहा है, मरना अच्छा है ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने, भगवान ने इतना भयंकर श्राप किसको दिया नहीं था, तो भगवान के मन में उसके प्रति कितना क्रोध रहेगा, ये सोच सकते ना। अदरवाइज भगवान ने इतना भयंकर पाप श्राप उसको दिया होता क्या, नहीं था। तो अगर भगवान के मन में इतना क्रोध उसके विषय में है, तो द्रौपदी के मन में कितना दुख हो गया रहेगा अपने पांच बालकों को मरते हुए देखकर, वो मेरे पांच बालकों को हत्यारा यही व्यक्ति है, फिर भी द्रौपदी का भाव क्या है कि नहीं, जो मुझे कष्ट हुआ है ना वो मेरे गुरुजी की माता को नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवहार जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, ये व्यवहार को कहते हैं एम्पथी। एम्पथी यानी दूसरों के दर्द को समझना, और कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जो दूसरों को दर्द हो रहा है वैसा मेरे तरफ से किसी को होना नहीं चाहिए। और ये तो स्थिति उसकी थी कि जिसने उसको कष्ट दिया है वो उसको भी कष्ट नहीं दे रही है, सोचो आप। आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि मरीज है भाई, तो मरीज को आप भी सुई लगाते हो ना, ब्लड लेते हो, तो आपको पता है कि कितना दुखता है, तो आप क्या वो बोलेंगे, सॉरी हाँ आप कष्ट होगा, थोड़ा सा उधर देखना, चिंता मत करना, मैं धड़के से निकालूंगी, और बाद में आपको बोलना चाहिए सॉरी हाँ मैंने आपको थोड़ा पीड़ा दिया, लेकिन आपका टेस्ट करना था ना इसलिए हमको करना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि जो दूसरों को दर्द हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसको हम समझते हैं कि इसको क्या दर्द हो रहा है और वो देना पड़ रहा है उसको मजबूरी से, इसलिए सॉरी भी बोलते हैं, इसको एम्पथी कहते हैं। और आपने खून निकाला उसका और पेशेंट बोला अरे कितना दर्द, तो आप बोलेंगे तो क्या हुआ, खून टेस्ट करने दर्द होगा ही, उसमें क्या बड़ी बात है, अब टेस्ट करने के तो यहाँ पर आए ना, इतना क्यों चिल्लाते हो, थोड़ा धीरज रखो, उसमें क्या है, बच्चे हो क्या आप, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉरी हाँ आपको एक सुई लगेगी, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अब मैं कम से कम दर्द में आपका खून निकालू। दोनों ही पद्धति में आप खून ही निकाल रहे हो टेस्ट करने के लिए, उतना ही 5 ml निकाल रहे हो जितना आपको निकालना चाहिए, 6 ml 4 ml नहीं, आपको उतना ही काम करना है, वही काम आप कर रहे हो, लेकिन दो तरीके अलग है। एक तरीके में आपके मन में आपके मन की जो श्रेष्ठता भावना है वो प्रकट हो रही है, एक के मन में आपकी दुष्टता प्रकट हो रही है। वही आपकी माँ आएगी, आपका बालक आएगा तो बाप रे 10 लोगों को खड़ा करके मैं नहीं निकाल दूँ, तुम निकालो, तुम बेस्ट हो, छोटी सोई सुई निकालना 26 नंबर की, फिर मेरा बेटे को दुखना नहीं चाहिए। खाली अपनों के लिए हम ऐसा व्यवहार करेंगे और परायों के लिए जो भी है डांट लगाएंगे उनको। तो इस द्रौपदी की कहानी से हम सीख सकते हैं कि द्रौपदी ने केवल तीसरे व्यक्ति को माफ नहीं किया, उसको माफ किया जिसने उसका इतना भयंकर अपराध किया था। बाइबल में ना एक सुंदर वाक्य लिखा है जो हमारे वेद में भी बहुत जगह लिखा हुआ है अलग तरीके से, वो वाक्य लिखा यह है कि दूसरों के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो खुद को करने पर, खुद के ऊपर होने पर बहुत दर्द होगा आपको। मतलब मैं आपको अगर चाटा लगाऊंगा तो कितना तकलीफ होगी आपको, वो अगर मुझे चाटा लगाना अच्छा लगता नहीं है तो मुझे भी किसी को चाटा लगाना नहीं चाहिए। या किसी ने मुझे अपशब्द उच्चारण किए कि आप ऐसे हो वैसे हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है सुनकर, तब मैं वो अपशब्द जो है वो दूसरों के लिए कभी उपयोग नहीं करूंगा उसका, क्योंकि मुझे अगर आपने वैसा कहा तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं वैसा नहीं बोलूंगा आपको जैसे सुनने से मुझे दुख होता है। ये बाइबल का 2nd commandment है 10 commandment के अंदर का, डू अन टू अदर्स वॉट यू वुड लाइक टू डू अन टू बी डन अन टू यू। आपके ऊपर बीतने पर जो आपको कष्ट होगा वो किसी को नहीं देना चाहिए आपको, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप पर बीतने के बाद में आपको कष्ट होगा, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका ये प्रमाण द्रौपदी ने दिया है, इतना हिम्मत, इतना वैष्णव व्यवहार, इतने दुख के समय प्रतीत करना बहुत मुश्किल बात है। सब कुछ ठीक है, खाना पीना खा के एसी में बैठे हुए हैं तो शायद आदर्श व्यवहार हो सकता है, लेकिन जब खुद भयंकर संकट में, दुख में, पीड़ा में, इमरजेंसी में दुख भोग रहे हो, तब जाकर जो आदर्श व्यवहार करता है ना उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। युधिष्ठिर को नाम युधिष्ठिर क्यों मिला, युद्ध में भी जो स्थिर रहता है उसकी मति विचलित नहीं होती है, कितना भी भयंकर युद्ध हो रहा हो, भयंकर मृत्यु हो रही हो, वध किया जा रहा है, घोड़े चिल्ला रहे हैं, गर्जना हो रही है, योद्धा लोग चिल्ला रहे हैं, आगमन कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं,
ऐसे भयंकर कोलाहल में मुठभेड़ में भी जिसका माइंड स्थिर रह सकता है उसका नाम युधिष्ठिर है। वैसे नाम तो धर्मराज है उसका, लेकिन नाम पड़ा उसका क्यों? व्यवहार की वजह से पड़ा, तो विचलित नहीं होता है। ऐसी कथा मेरे दूसरी मन में आती है देवकी की। अभी देखो ये दोनों उदाहरण है ना, ऐसे उदाहरण है कि दोनों भी संकट में थे उस समय, दोनों भी पीड़ा में थे। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं और आदर्श व्यवहार पर प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे अभी ऐसे में बैठकर मैं प्रवचन दे रहा हूं आदर्श व्यवहार के ऊपर, लेकिन जब प्रसंग आएगा मुझे, मेरे ऊपर विकट प्रसंग आएगा, तब मैंने जो आज कहा है वही करते हुए आपको नजर आएगा, तो आपको लगेगा भाई हाँ कुछ है। लेकिन उस विकट समय पर मैं जो यहां पर बोला था उसके उल्टा व्यवहार करते हुए आपको नजर आएंगे तो बोले सब बेकार बकवास की थी उस दिन एसी में बैठ के। ऐसे बोलेंगे ना आप? देखो देखो प्रवचन में कुछ बोलते हैं और प्रसंग में कुछ अलग ही करते हैं, या रोड पे कहीं अलग ही व्यवहार करते हैं, जो कोई देखना नहीं होता है। तो देवकी का क्या संक्षेप में आप सबको कहानी मालूम है आपको? देवकी के 6 जस्ट बॉर्न अभी अभी जन्म जिसका हुआ है ऐसे बालकों का एनआईसीयू में डेथ नहीं हुआ था, हॉस्पिटल में होता है ना एनआईसीयू में डेथ, एनआईसीयू में डेथ नहीं हुआ था, नॉर्मल बच्चे थे वो सब। उसको पैर को पकड़कर उसके मामा ने आकाश में घुमा घुमा कर पत्थर पर पटक के उसको चिंदी बना दिया था, पूरा कंप्लीट लगदा बना दिया था। इसके यहां तक कहा गया कि उस जेल के दीवार पर वो 6 दाग भी थे खून के, जो हर एक बालक को मारते समय जो उड़े थे ना, वो 6 दिशा में 6 दाग थे। और वो पहले बालक जो मारा गया तभी जो दीवार पे दाग गिरे, वो दूसरे बालक को मारा तभी पहले वाले के थे उधर ही, दूसरे के नए पैदा हो गए, उसी में वो जीवित रहती थी, उसी में जीवित थी वो। ऐसा नहीं कि अलग कमरे में ले गए जाते और अलग मार के वापस ला देते, उसी के सामने उसका वध किया गया। आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए कितना दर्द वाला काम है वो, कितनी पीड़ा उठा के जन्म दिया, उस बालक को दूध पिलाने के पहले ही आंखों के सामने पीस पीस कर वध किया जा रहा है, और एक भी नहीं दो भी नहीं 6 बार किया गया है, और उसी जगह रखा गया है उसको, उसके बाद में भी उस खून को देखते हुए, उस बालक के खून को देखते हुए। तो कितना कष्ट प्राप्त किया होगा उसने, लेकिन बेचारी असहाय थी वो, क्या करेगी, इतना बलवान था कंस, वसुदेव भी असहाय थे उस समय। लेकिन जब 7वें बार देवकी गर्भवती हो गई तो उसका गर्भ नष्ट हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल में, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज मतलब क्या हुआ, भगवान की इच्छा से योग माया ने उस गर्भ को वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया, उसको हम लोग नहीं कर सकते, उसको भगवान ने अपनी इच्छा से किया, लेकिन जनता के लिए क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया, पता नहीं 7वां बालक नष्ट हो गया। फिर 8वें बालक के रूप में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, फिर सब प्रकाश हो गया, भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, चतुर्भुज में आकर सांत्वना दिया, चिंता मत करना मैं भगवान हूं, आपको लगता होगा आपका बालक हूं लेकिन मैं वही भगवान हूं जो आपकी रक्षा के लिए आया हूं, कंस का मैं वध करूंगा, चिंता मत करना आप। फिर भी माता को बहुत भय हो रहा था, अरे मेरे इतने सुंदर बालक को कंस आके मारेगा, उसी का इंतजार कर रहे हैं, 8वां बालक कब जन्म लेगा वगैरह वगैरह। तो भगवान ने ना पूरा इतिहास बताया है देवकी को कि तुम पहले कौन थी, तब मैं किस रूप में आया था, दूसरी बार तुम कौन थी, तब मैं वामन के रूप में आया था, तीसरी बार अभी तुम देवकी वसुदेव के रूप में हो और मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ, मैं वही हूँ, चिंता मत करना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ, भय को छोड़ दो अभी आप निश्चिंत रहो। और फिर भी देवकी का मन शांत नहीं, देवी बोले नहीं 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 आप ना इतना बड़ा भगवान का रूप लेके मत आओ, आप बालक बन जाओ, मैं आपको कहीं छुपा लूंगी गोद में। तो 4 वाला भुजा वाला रूप जो है वो अदृश्य हो गया और एक 2 भुजा वाला बालक जो है सामने आया, उसको उठाया तुरंत अपने आंचल में छुपाया, दूध पिलाया एक बार, तब तक उसकी रोने की आवाज से पहरेदार उठ गए, भाग भाग के गए और कंस को बुला के लाया, और कंस आया, हा 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 हा, अभी आया है मेरा काल, देखता हूं कैसे मेरे हाथ से बचता है, ऐसे करके आया। तो देवकी बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तब तक क्या हुआ था पता है ना आपको, तब तक वो वसुदेव जी उनको ले गए, उनको छोड़ के आए उधर, और एक बालिका को लेकर आए, तभी ये उठाना, तभी वो पहरेदार उठ गए, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया ना, भगवान ने आदेश दिया कि जाओ गोकुल में छोड़ के आओ मुझे, वहां पर एक कन्या है उसको उठा के लेके आओ। तो वसुदेव ने वही किया और बाद में जब आया तभी पहरेदार उठे हैं, और वो कन्या के आवाज से फिर कंस को बुला के लाया उन्होंने। तो कंस आया मारने के लिए,
देवकी मुझे उस बालक को दे दो।
तो देवकी बोल रही, भैया वो लड़का नहीं है, लड़की है।
तो जोर से ठहाका मार के हंसा, देखो मेरे भय से देवता भी झूठी आकाशवाणी करते हैं आजकल। हा 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 हा। लेकिन देवताओं के छल कपट से मैं फंसने वाला नहीं हूं, शायद वो मुझे फंसा रहे होंगे, लड़के की जगह लड़की दिखाते होंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। देवकी इस कन्या को मेरे हाथ हवाले कर दो। तो देवकी कह रही, नहीं भैया नहीं, भैया नहीं, मैं वादा करती हूं तुम्हें जब पुत्र होगा तो मेरी कन्या के साथ उसका विवाह कर दूंगी मैं। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना है, और उसके हाथ से छीन लेता है उसको, है ना। और वैसे ही उठा के पटकने वाला ही था तब वो आकाश में उड़ जाती है। सब जानते हैं कथा को, सब बच्चे जानते हैं भारत के। और आकाश में आके क्या बोलती है, देवी का उदाहरण करते हैं, अष्टभुजा वाली भयंकर उदाहरण करती है, उसको पहचानता है वो, ऐसा नहीं जानता नहीं कौन है। बोल रहे मूर्ख कंस, छोड़ दे ये सब अत्याचार, तुम्हारा काल कहीं और पल रहा है, निश्चित तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो उसको पछताता हो गया, अरे बाप रे ये तो बड़ा कैची में आ गया मैं, हाँ मैं क्या सोच के इस लड़के को उठाया था और क्या मुझे सुनना पड़ रहा है। बहुत डर गया वो बेचारा, और ना 6 बार जिसने इतनी क्रूरता के साथ अपने ही बहन के छोटे नवजात शिशु को पत्थर पर पटक पटक कर पीस दिया था, इतना क्रूर आत्मा एकदम चरणों में गिर गया और रोने लगा, दीदी मुझे माफ करना, वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक कठपुतली हूं काल के हाथ में, काल ने अपनी इच्छा से अपनी जैसी इच्छा थी वैसे मेरे हाथ से यह कार्य किया, तो मैं गुनहगार नहीं हूं, कृपा करके मुझे गलत मत समझना, मैं तो एक कठपुतली हूं काल के हाथ में, जो विधाता की इच्छा है मेरे हाथ से उन्हें पूरी की, मैं आपसे माफी चाहता हूं बहन, मुझे माफ कर देना। अभी दोबारा विचार करना, आप देवकी के जगह पर होते और वही बालक वही भाई जो इतनी क्रूरता पूर्वक मेरे 6 बालकों को वध कर चुका है, वो अभी मेरे बोला अब आए उस पार के नीचे, ऐसे बोलते ना हम लोग कभी हिंदी में, अब मेरे चरणों में आ गया वो, तो उसके मुंह पे लात मारने का यही मौका है। जो भी मेरे बल शरीर में शक्ति है, मैं कन माता हूं, मैं स्त्री हूं, अबला हूं, फिर भी ये इतना महान क्रूर आत्मा दुष्टात्मा मेरे चरणों में आ गया, तो एक लात तो मारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए बदले के रूप में, है ना। कम से कम एक तमाचा मार सकती हूँ, एक लात मार सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोल सकती हूँ उसको लात मारो। इतना मन में दुख है ना आपके, 6 बालकों का वध किया मतलब क्या है। तो अगर हम लोग उसके साथ में होते ना तो जरूर बदले की बात करते, कुछ गुला बुरा भला को कहते, कुछ गाली देते, कुछ शाप देते, कुछ लात मारते उसको, कुछ मुक्का मारते, कुछ मुंह से मारते, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो नम्रता की अवस्था में आ गया है, रो रो के गिड़गिड़ा रहा है माफ करो माफ करो माफ करो। अरे देवकी ने उसको तुरंत माफ कर दिया, पता है ना आपको, देवकी ने कोई शाप नहीं दिया उसको, तुरंत माफ कर दिया देवकी ने, और वो चला गया, बड़ा अच्छा हो गया, जिसका अपराध किया उसने भी क्षमा कर दिया, अभी तो कोई इंटेंशन की बात ही नहीं है, जिसका अपराध किया अगर वो उस समय होते तो कम से कम उसके अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ता, लेकिन जिसका अपराध किया उसने मैंने माफी मांग ली तो मेरा काम हो गया, तो घर जाके सो गया आराम से। तो ये नामुमकिन चीज है जो हमारे जीवन में मुमकिन नहीं है, जो देवकी ने अपने जीवन में करके दिखाई। तो मुझे भी बहुत दिन का प्रश्न था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अरे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो बाद में आप सोच समझ के माफ कर सकते हो। ऑन द स्पॉट अगर कोई आपके सामने खड़ा हो गया और वैसे अभी अभी 6 बालकों का वध कर चुका है वो, अभी 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 भी लड़की का भी उठा के वध करने के मूड में था वो ना, अभी 5 मिनट के पहले बच्चे को खींच के पैर उठा के मारने वाला था वो व्यक्ति के प्रति आपकी भावना कैसे हो सकती है। लेकिन उसी क्षण में उसने उसको क्षमा कर दिया। तो बाद में मैंने बहुत स्टडी किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या है वो चीज जिसकी वजह से वो देवकी ऐसा व्यवहार कर सकती है। फिर मुझे एक प्रवचन में उसका उत्तर मिला, उसका उत्तर ये था कि ये 6 बालकों का वध होने के बीच में उसको कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था, और कृष्ण भगवान का दर्शन जब हुआ था तो इतना आनंद हुआ था, इतना आनंद हुआ था, इतना आनंद हुआ था कि उस आनंद के सागर में सारे दुख जो है वो नष्ट हो चुके, दुखों की याद, दुखों का परिणाम, दुखों का दर्द, दुखों की जो क्या कहते हैं उसको, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब प्रमाण, जितना प्रमाण में दुख हुआ था, इतनी मात्रा में दुख हुआ था ना, किसी माता को एक बालक मर गया तो कितना दुख होता है, 6 बालकों को इस तरह से मृत्यु प्राप्त हो गई तो कितना दुख होगा, वो दुख का कितना गहरा परिणाम होगा, जिंदगी भर माँ भूल नहीं सकती है। ये सारे दुख और दुख का परिणाम एक भगवान के दर्शन की वजह से सब नष्ट हो गए, और उसके बाद ही वो लड़की आई, वो उसके बाद ही
कंस आया तो बीच में कुछ समय ज्यादा नहीं था, अभी अभी कृष्ण का दर्शन लेके अदृश्य हो गए हैं और अभी अभी वसुदेव जी लौट के आए हैं, कुछ ज्यादा समय नहीं था। तो अभी ऐसे विकट परिस्थिति में जहां बदला लेना चाहिए, क्रूर हमारा व्यवहार होना चाहिए, वहां पर मृदुता का व्यवहार, मुलायम व्यवहार कैसे हो सकता है? केवल कृष्ण भावना से हो सकता है। कृष्ण का दर्शन करके वो इतनी कृष्ण भावना भावित हो गई थी, इतनी भाव विभोर हो गई थी कि उसको किसी भी पिछले दर्द का याद नहीं था उस समय। तो कल ही मैं मेरे स्कूल के एक टीचर को मिलने गया था जो अभी 88 ईयर्स की है, हाँ स्कूल छोड़ के अभी हमको 40 साल हो गए 40 कहाँ हो गए, ज़्यादा हो गए 41 ईयर्स हो गए। तो वो टीचर से मैं बात कर रहा था तो वो बार बार उसको स्कूल के बुरे अनुभव की याद आ रही थी, बार बार मुझे वो टीचर वो प्रिंसिपल ऐसे वैसे बता रही थी। फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम अभी 40 साल हो गए, जिसका नाम लेकर आप दुखी हो वो भी गुजर गए, अभी आप क्यों अपने मन को पीड़ा लेकर बैठे हो, छोड़ दो उसको आप। तो बाद में ना मेरी इतनी बुजुर्ग जो टीचर थी उन्होंने कहा, नहीं रे मुझे ना ये मुझे प्रश्न पूछना है तुझे, मुझे बताओ कि कैसे ये भूल सकते हैं हम लोग, कुछ उपाय बताओ उसके लिए, मुझे ये भूलना है लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ, बार बार मुझे उसी की याद आती है, आप लोगों को मिलकर स्कूल की याद आती है, स्कूल की याद करके उनकी याद आती है जिन्होंने मुझे दर्द दिया था स्कूल में, तो मुझे बताओ कैसे भूलना चाहिए। मैंने कहा उसके लिए एक ही उपाय है, जब कृष्ण की आप याद करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण में मशगूल हो जाएंगे तो आपके सारे दर्द मिट जाएंगे। दर्द को मिटाने के लिए केवल भगवान की भावना सबसे ऊंचा उपाय है। मैं तो आदमी ना मरते दम तक बचपन में हुआ दर्द नहीं भूल सकता है, देखो आप सोच के देखो, खास करके औरत लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर मेरे सासू ने मैं जब घर में पहले कदम रखा था, कदम रखते ही मेरा गहना उतार के ले लिया और अपने कबड़ में लॉक कर दिया, उसके लिए 15 साल के बाद में रोते हैं कि मुझे ऐसा क्यों किया उन्होंने, पहले दिन आते ही ऐसा मुझे दुख क्यों दिया। मतलब भूल जाओ, अभी सासू जी मर गई, अभी सब कुछ हो गई, गहना तुम्हारे हाथ में है, कबड़ जिसमें रखा है कबड़ भी चाबी तुम्हारे पास में है, लेकिन वो दुख जो है ना वो भूल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे समय पर दुख दिया गया उनको, ऐसे कोमल समय पर जब ये घर में बहू के रूप में प्रवेश कर रहे हैं उस समय इतना दर्द दिया ना, वो कभी भूल नहीं सकती बहू, क्या कर रहे हैं अभी, है ही तकलीफ ऐसी वो। या जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था तो मेरी मौसी ने आके कितना तमाशा किया था, सारा एंगेजमेंट का आनंद जो है वो पूरा मिटा दिया उसने, मैं कभी माफ नहीं कर सकता, मेरे जिंदगी का इतना सुनहरा समय था वो, जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी तब मेरी मौसी ने आके इतना तमाशा किया था। तो शादी हो गई, अभी बच्चे हो गए, शादी धूमधाम से हो गई, मौसी गुजर गई, फिर भी वो नहीं भूल सकते कि मेरे वो समय पर इतना दुख मुझे हुआ था। तो ये हमारे सब लोगों की समस्या है, हमको किसी ने दुख तो दिया है जिंदगी में और हम कभी उसको ना भूल सकते हैं ना उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको भूल नहीं सकते हैं और माफ नहीं कर सकते हैं तो हमें दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर पॉजिटिव भावना नहीं है और नेगेटिव भावना अभी तक मौजूद है तो नेगेटिव भावना आपको दोबारा दुनिया में लेके आएगी, जन्म होगा आपका, मृत्यु होगा, वापस आना पड़ेगा। तो मैंने बताया मैडम को कि मैडम मरने के समय ये सब भावना लेकर कहाँ जाएंगे आप, वो जो सब लोग गुजर गए वो चले गए दुनिया में, अभी है नहीं दुनिया में वो, आप खाली उनकी भावनाएं लेकर बैठे हो अब तक नेगेटिव, अपने आप को ही कष्ट दे रहे हो, उनको कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट आपको हो रहा है क्योंकि आपके मन में वो नेगेटिव भावना है सब, इसलिए मिटा दो उसको। और मौत के समय मैंने उनको बताया कि विट्ठल के सामने खड़े रहने का समय आएगा ना तो सारे नकारात्मक चीजों को त्याग करके केवल सकारात्मक चीजों को लेकर खड़े रहो आप, तब सकारात्मक भावना देखकर विट्ठल आपको स्वीकार करेंगे। अगर आपके मन में किसी के प्रति नकारात्मक नेगेटिव बुरी भावना रहेगी तो विट्ठल आपको स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इतना बड़ा स्टॉक है ना एक साथ उस समय निकालने के बदले में अभी धीरे धीरे निकालो उसको, थोड़ा थोड़ा सब भूल जाओ, ताकि मृत्यु के समय में बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा कि अभी भी 100 बाकी है, ऐसा नहीं होगा, एक आध दो बाकी रहेंगे तो मिटा सकते हो उसको आप, लेकिन मृत्यु के समय 100 ऐसे निगेटिव बातें आपको तकलीफ दे रही है मन में तो कोई चांस नहीं है उस समय पे, इतना विकट प्रसंग होता है मृत्यु में तो आप क्या क्या करेंगे उस समय। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ना इस दुनिया में मैं मेरे परिवार में मेरे इर्द गिर्द सब लोगों को देख रहा हूँ जो परेशान है किसी दूसरे की वजह से और वो भूल नहीं सकते, वो बूढ़े हो गए फिर भी बचपन के दर्द को भूल नहीं सकते, और सब लोग
परेशान है उसके वजह से, किसी को ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से, किसी को और तकलीफ है, किसी को दुख है, दर्द है, वो स्माइल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे कोई लोग हैं। तो सबको मैं गरीब से देखता हूँ और मेरे मन में एक ही अनुभूति होती है कि काश अगर ये कृष्ण के भक्त होते तो कब के ये शांत हो चुके होते और सुधर चुके होते, भूल कर गए होंगे कभी तक, छोड़ दिया होता कब से उन्होंने, लेकिन वो सारे इन चीज़ों को अपने साथ में लेके चल रहे हैं, बोझा अपने सर पे, कोई मतलब नहीं उसका। जैसे कचरा, गटर का सामान, सड़ा हुआ सामान सब साथ में लेकर चल रहे, उसकी बदबू भी आ रही है, उसकी गंदगी भी है हो रही है, लेकिन उसको त्याग नहीं सकते हैं। अगर त्याग सकते हैं तो फिर वो सब गंदगी पीछे रह जाएंगे, बदबू पीछे रह जाएगी, आप आगे चले जाओगे और जीवन का आनंद लोगे, जीवन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन किसी पुराना दुख को लेकर जिंदगी भर रोते रहना ये तो मूर्खता की बात है। और देवकी के लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन देवकी को उसके इतने पुण्य थे कि उसको भगवान ने दर्शन दिया, उसके दर्शन की वजह से सारा जितना भी नेगेटिव था, नकारात्मक था, नेगेटिव जितना था, सब कुछ बदबू वाला काम सब खत्म हो गया। इसलिए इतनी क्रूर कर्मा पापी दुष्टात्मा को देखकर भी वो क्षमा कर सकी। हमको भी दर्शन नहीं देंगे भगवान, तो इतने योग्य तो है नहीं हम लोग, लेकिन उनका नाम लेकर उनको हृदय में ग्रहण करना चाहिए। जितना अधिक आपने भगवान को अपना लिया है उनके नाम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, उतना जल्दी आप लोग दूसरों का सब नेगेटिव भूल सकते हो, नहीं तो फिर वापस आना ही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना का मार्ग जो है वो इतना शक्तिशाली है कि जो वो जितना हद तक हम उसको अपनाते हैं उतना हम लोग सब बुराइयां छोड़कर आगे चले जा सकते हैं, और जितना हम लोग कमजोर है कृष्ण में, कृष्ण भावना में, उतना ये सब बुराइयां हमारे साथ चलती रहेंगी और हमको परेशान करती रहेंगी, त्रस्त करते रहेंगे, पीड़ित करते रहेंगे। और आप लोगों का सबका अधिकार है आनंदी रहने का, समझ लो आप, सब लोगों का आपका अधिकार है, जो मनुष्य बना हुआ है वो सबको आनंदी रहने का अधिकार है। ये नहीं कि जो धनी है वही आनंदी रहेंगे, जो सुंदर है वही आनंदी रहेंगे, जो बड़े लोग हैं, बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं वही हंस सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहां पर भी हो, जब तक मनुष्य हो तब तक आप खुश रह सकते हो, अगर आपकी मनोधारणा जो है ना वो सही दिशा में है, आपका मन जो है वो अगर सही जगह पर स्थित है, सही भावना में है, तो आप बुरे से बुरी अवस्था में भी हंस सकते हो, खुश रह सकते हो। तो संतुष्टि की दुकान में नहीं मिलती है, खाली वो अमीरों को प्राप्त होती है या सुंदर व्यक्ति को प्राप्त होती है कि बड़े अधिकारी को प्राप्त होती है। संतुष्टि ये ऐसी चीज है जो आपको ही प्राप्त करनी है अपने मन के स्तर पर, वो कोई दुकान में नहीं मिलेगी, वो आपको ही अपना जीवन ऐसे मोड़ना है जिस संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। और शास्त्र में लिखा है, कृष्ण के जन्म की कथा के बारे में बीच में लिखा हुआ है कि संतुष्टि ही मन का सबसे बड़ा गहना है। जो संतुष्ट होगा ना वही उसको मिलेंगे आप, तो आपको भी संतुष्टि का अनुभव होगा, आप भी शांतता का अनुभव करेंगे। और जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, दुखी है, उसको मिलने पर आपको असंतुष्टि और दुख का अनुभव होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक परेशान व्यक्ति को मिलेंगे तो आपको परेशानी का अनुभव होगा कि नहीं, अरे बाप रे वो इतना परेशान है कि देखकर ही परेशान हो रहा हूं मैं इधर। किसी को क्रोध में देखेंगे तो आप भी यहाँ पर ठक 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 हो जाएगा आपका, समझो कोई व्यक्ति भड़क के एकदम ऑफिस में आ गया, चिल्लाते हुए आएगा तो आप शांत बैठ काम कर रहे थे, शांत नहीं बैठ सकते, आप भी एकदम आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आप संतुष्ट व्यक्ति को मिलेंगे तो आपको भी संतुष्टि नहीं होगी तो भी आपको संतुष्टि का अनुभव होगा। या किसी शांत व्यक्ति को मिलेंगे और हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं तो शांत व्यक्ति के मिलने के बाद हम भी शांत हो जाते हैं, ये हमने कई बार अनुभव किया है। हम लोग बहुत डिस्टर्ब होकर जाते हैं गुरुजी के पास, कभी गुरुजी को ये 50 प्रश्न पूछेंगे, बोले जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब गुरुजी कमरे में जाते हैं और बैठते हैं सब प्रश्न भूल जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है, इतने प्रश्न थे कागज में लिखे भी लाए थे, एक भी पूछने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु जी को मिलते ही इतनी शांति का अनुभव होता है। बोलता है इतनी शांति का अनुभव होने के बाद प्रश्न कैसे हो सकते हैं, प्रश्न है ही नहीं कुछ। बोले यस यस बोलो, क्या तकलीफ है, नहीं महाराज सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट फाइन। में नहीं बताओ कुछ क्या पूछने के लिए आए थे, नहीं महाराज एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर कोई व्यक्ति शांत है और आपको शांति का अनुभव दे रहा है, ये आपने अनुभव किया, कितना अच्छा होगा अगर हम शांत है और हमको मिलकर लोग शांति का अनुभव करें,
और हम इतने आनंदी है कि हमको मिलकर लोग आनंद का अनुभव करें, अच्छा होगा ना। जरूरी है क्या हम जब भी किसी को मिलेंगे हमारी परेशानी की वजह से दूसरा आदमी परेशान हो जाए, ऐसा लगेगा, अच्छा लगता है? या हमें मिलकर लोगों के परेशान लोगों को भी शांति का अनुभव हो, ऐसा लगे कि अरे ये माता जी को मिलना चाहिए, प्रभु जी को मिलना, जब भी संकट होगा ना इनको मिलो आप जाके, जस्ट बैठो उनके आप 10 मिनट जाके, आपको अच्छा लगेगा कि सब दुनिया सही है, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा क्यों ना हम बने, क्यों सबके लिए परेशानी का कारण बने? मौका है ना आपके लिए कि दादाजी को मिलेंगे ना तो सब दुख खत्म हो जाते हैं, वैसा एक बार हाथ घुमाएंगे सर पे मानो कुछ दुख है ही नहीं दुनिया में। ऐसे दादाजी हम क्यों नहीं बन सकते, हम क्यों परेशान बालक बनते हैं हमेशा, है ना? तो ये सब रहस्य कृष्ण भावना का है। कृष्ण भावना को अपनाने से ऐसी एक अद्भुत आभा आपके चेहरे पे आएगी, ऐसा अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे आप, ऐसी संतुष्टि का अनुभव करेंगे कि आपको मिलने पर भी मिलने वाले लोग उसी भावना का अनुभव करेंगे। और ये आप सबसे बड़ी भेंट लोगों को दे सकते हो। अगर आप धनी भी नहीं हो, सुंदर भी नहीं हो, पैसे वाले भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप, लेकिन अगर आपके मन में संतुष्टि का धन है तो आपको देखकर अमीर से अमीर व्यक्ति भी जलेगा आपके ऊपर, अरे ये व्यक्ति इतना गरीब है फिर भी मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये शांति जो उसके चेहरे पर है वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुझे एक बात संकोच हो रहा है बताने में, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। एक विश्व के, भारत के नहीं, हमारे बहुत निकट के हैं, लेकिन वो विश्व में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पता नहीं उसके उनके पास में कितने हजारों और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आज की तारीख में, लेकिन कर्म धर्म संयोग से हम लोग साथ में हरे कृष्णा में आए और फिर हम लोग भक्त बने और मित्रता हमारी अभी भी है और हम मिलते रहते कभी कभी। लेकिन जब वो मुझे पहली बार मिले थे तो वो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन आज के तारीख में तो बहुत भयंकर अमीर है, मतलब आप विचार नहीं कर सकते। हमारा कभी कभी ना हमको पता चलता है ना कि कितना धन होगा तो उसका अंदाज लगा सकते नहीं, इतने अमीर है वो। लेकिन जब मैं उनको पहली बार मिला था तब मुझे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, और अभी जब मिलते हैं तो वो यही प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हो। तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि ऐसी क्या चीज है जिससे मैं खुश रहता हूं। लेकिन आपको जो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ उसके पास में है, जो जो आपको खरीदने की इच्छा है वो सब चीज वो खरीद सकता है। मतलब क्या चाहिए आपको जिंदगी में, आपको लगेगा ये मिलकर खुशी होगी, ये मिलकर, वो सारी चीजें वो खरीद सकता है, इतना धन है उसके पास, लेकिन उसके पास फिर भी खुशी नहीं है। और हमारे पास वो कुछ भी नहीं है जो उनके पास में है, फिर भी हमारे अंदर खुशी को वो देखते हैं, मतलब खुशी होगी इसलिए देखते हैं ना। मैं तो नाटक तो नहीं करता हूँ, ड्रामा तो करता नहीं कभी भी, जो भी हूँ मैं ओपन आईने जैसा हूँ, लेकिन मुझे वो हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं और आके मुझे जोर से गले मिलते हैं, जोरदार, और कान में पूछते हैं तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। मेरे मन में एक ही उत्तर रहता है, जो मैं उनको बताता नहीं हूँ, मेरे मन में उत्तर एक ही रहता है, वो है कृष्ण। कृष्ण को अपनाने से आप खुश हो सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो, दुनिया को खुशी दे सकते हो, दुखी होने पर भी दुनिया को खुशी दे सकते हो। ये पावर है कृष्ण के अंदर जो आपको कृष्ण को अपनाने से प्राप्त हो सकता है, या तो आप प्राप्त करो या वो आपको प्राप्त हो जाए, वो जैसे भी होगा, लेकिन कृष्ण के रास्ते में रहना ही चाहिए आप लोगों को। आप कृष्ण के रास्ते में रहेंगे तो खुशियां ही खुशियां आपके पीछे आएंगी। शास्त्र में कहा है कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उसके पीछे सारे भोग, जिसको भुक्ति कहते हैं, भुक्ति देवी, या तो विरक्ति यानी मुक्ति, या तो सिद्धि यानी कि चमत्कारिक शक्ति, ये तीनों देवियां उस व्यक्ति के पीछे हाथ जोड़ के भागती रहती हैं। और भक्त जो है वो उनकी ओर मुड़के भी देखता नहीं है, वो परछाई की तरह होते हैं। परछाई कैसे होती है, जब तक आप परछाई को पकड़ने के लिए प्रयास करोगे परछाई आपसे दूर दूर भागती है। देखो आप कोशिश करो आपकी छाया को ना पकड़ने का प्रयास करो, वो दूर जाएगी आपसे, और उसको छोड़ के उल्टी दिशा में जाओ वो छाया आपके पीछे पीछे आएगी, आती कि नहीं आती है, देखो आप खुद प्रयास करके देखो। तो ये परछाई की तरह है तीनों चीजें, दुनिया के भोग, विरक्त मुक्ति और सिद्धि, आप उसके पीछे जाओगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे,
उसको छोड़ के भगवान की ओर जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी वो। तो बेस्ट क्या है? भगवान के पीछे भागो, क्योंकि भगवान के पीछे भागने से भगवान तो मिलेंगे ही, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, और ये तीनों भी आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल गया आपको, इसलिए भगवान ही उसका उत्तर है। जो वो बार बार मुझे पूछते हैं उसका उत्तर यही है, भगवान। और उसको अगर आपने अपना लिया है तो आपके जीवन में आपको कोई जरूरत नहीं किस चीज की। तुकाराम को जब ही सर तुकाराम ने पुंडलिक को भगवान ने कहा क्या चाहिए मांग लो, तुम दर्शन दिया ना भगवान ने पुंडलिक को विठ्ठल ने दर्शन दिया ना, भगवान बोलते वरदान मांगो। तो तुकाराम बोलते हैं अरे आपसे मांग के क्या फायदा है, क्योंकि जो भी आप दोगे वो सब समय के साथ नष्ट हो जाएगा। मैं पैसा मांग लूंगा और कुछ मांग लूंगा, प्रॉपर्टी मांग लूंगा, एक लोक मांग लूंगा आपसे, लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीजों के स्रोत उगम जो है वो आप हो और आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं ये सब चीजें क्यों मांगू, मैं आपको ही मांग लेता हूं जो सबका सागर है, सबका उगम है ना, सब चीज का उगम आप ही हो, सोर्स आप हो, तो मैं आपको ही मांग लेता हूं। आप है ना, आप इधर ही खड़े रहो, भगवान खड़े रहेंगे उधर ही। देखो आप प्रहलाद को भी भगवान ने बोला था, हिरण्यकश्यप ने, मांगो मांगो नहीं अपने नरसिंह भगवान ने, तो उसने कहा भगवान मैं व्यापारी नहीं हूं, हाँ कुछ किया कुछ मांगा उसके बदले में, मुझे मैं व्यापारी मत बनाऊ, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपसे कुछ इच्छा रख के भजन नहीं किया था आपका। बोले नहीं भी कुछ भी मांगो 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 बोल रहे, भगवान पीछे पड़ रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं। बाद में क्या बोला, अगर आपको ही इतना देने की इच्छा है ना तो एक काम करो, मेरे पिताजी जो पापी है ना इसका उद्धार करो। बोले क्या प्रहलाद, तुम उसके पिताजी हो, इसी बात पर उसका उद्धार हो गया है, तुम उसके बेटे हो, इसी बात पर तुम्हारे पिताजी का कब से उद्धार हो चुका है, चिंता ही मत करो, उसकी 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की 21 पीढ़ी के उद्धार मैंने कर चुका है केवल तुम्हारे होने से। और फिर प्रहलाद क्या बोलते हैं एंड में, देखो भगवान आपको देना ही है ना, एक ही बात दे दो कि मेरे हाथ से ना भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए कभी। अभी अपने लिए क्या मांगा उसने, ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना पत्नी मांगी, ना बच्चा मांगा, ना कुछ राजा बनाने का, राजा बनने का वर नहीं मांगा, कुछ नहीं, खुद के लिए मांगा। और भगवान उसको गोद में लेते हैं, सिंह के रूप में भगवान है ना, इधर बिठाते हैं और सिंह की तरह चाटते हैं उसको, जैसे सिंह चाटते हैं ना अपनी माँ को, अपने बच्चे को। इतना प्रेम भगवान को आया कि ऐसा भक्त जो है कि मैं बोल रहा हूं ले लो, मैं खुद खड़ा होकर बोल रहा हूं भगवान ले लो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट। हम लोग होंगे तो क्या बोलेंगे, भगवान एक 15 मिनट का टाइम देना मुझे, मैं जरा सोच के आता हूँ, पेन पेपर लेके आता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए मेरा, या ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। इधर बार बार भगवान पूछ रहे हैं मांगो मांगो मांगो, तो नहीं 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 बोल रहे हैं। अभी ऐसा भक्त को ना अपने आप को भगवान बेच देते हैं, क्योंकि वो कुछ दे नहीं पाते उसको, तो अपने आप को ही दे देते हैं उसको, उसका गुलाम बन जाते हैं भगवान, उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं, उसके नियंत्रण में चले जाते हैं। भगवान बोलते मैं तुम्हारा दास हूं। देखो अर्जुन का सारथी बन गया कि नहीं, वो सब कुछ नुछावर कर दिया, कुछ मांगा ही नहीं, सब कुछ अपना दे दिया, तो भगवान बोलते तुमने सब कुछ दे दिया, मैं भी देता हूँ अपने आप को तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा बन के रहूंगा, जैसा नचाओगे ऐसा नचाऊंगा नाचूंगा। ये चमत्कार है भक्ति का, और ऐसा चमत्कार जब हम अपने जीवन में कर सकते हैं तो हम भी वो बन जाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको, सबको माफ कर सकते हैं, सबको आनंद दे सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सबको आनंद दे सकते हैं, ये हम सब बन सकते हैं। एक ही काम करना है, वो कृष्ण को अपने हृदय में बिठाना है, अपना बनाकर, और जिंदगी को निछावर करना है उनके चरणों में। तो ऐसा वक्त भूखा रहेगा, तड़पेगा, पानी खाना पीना घर बिना कपड़े बिना तड़पेगा। अरे ऐसा भक्त जो भगवान उसको अपने आप को अर्पण कर रहे हैं उसका बन रहे हैं, वो भिखारी बनेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे भक्त को भगवान छोड़ देंगे? अरे वो अपना बना के रखेंगे, उसको सब देखभाल करेंगे उसकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू।